1 John chapter 1
और आज पहला यूहन्ना पहले अध्याय से हम कुछ बातें देखेंगे
5 to 9
पांच से नौ वचन
1 John chapter 1 5 to 9
पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय पांच से नौ वचन
We should read that first This is the message we have heard from him and announced to you that God is light and in him there is no darkness at all If we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, We are deceiving ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. तो हिंदी में अपना अपना बाइबल में पढ़िए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए The theme of this passage is we can say walking in the light
aur aaj ka jo shirshak rahega wo ye hai ki hum us ujiyale mein chale
walking in the light means renouncing sin and willing to follow jesus in a way in short
aur prakash mein chalne ka matlab ye hai ki hum us paap ko tyag kar yeshu ke sath chalte hai
it reflects our commitment
aur ye hamare samarpan ko pradarshit karta hai
It reflects our interest
और हमारी रुचि को प्रदर्शित करता है
and our desire to leave our past ways and follow the footsteps of Jesus
और हमारे पिछले जीवन को पीछे रखते हुए यीशु के पदचिन्हों पर चलने के लिए सिखाता है
walking means it also indicates we are making progress
और चलना इसका मतलब ये भी है कि हम आगे बढ़ती कर रहे हैं
we are not living in the same level of life where we were in the last year
और हम लोग पिछले साल जो स्तर पे थे वो स्तर पर हम नहीं रहना चाहते
God wants to see that progressively step by step we are making progress and development in our walk with the Christ
और परमेश्वर ये देखना चाहते कि प्रतिदिन एक कदम से एक कदम हम आगे बढ़ते परमेश्वर में बढ़ते जाए
So he is opening this passage saying that this is a message that I want to share with you
और ये वचन जिसे शुरुआत होता है लिखता है कि ये समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाना चाहते
हैं And that message in simple terms is God is light
और वो समाचार ये है कि परमेश्वर ज्योति है
एंड इन गॉड देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल
और परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है
सो दैट इज द फर्स्ट एज इन अ नटशेल द मैसेज व्हिच जॉन वाज ट्राइंग टू कन्वे टू गॉड्स पीपल
और परमेश्वर के लोगों को यूहन्ना बहुत ही संक्षिप्त के अंदर ये समाचार देना चाह रहा है
गॉड इज लाइट एंड There is no darkness in God at all.
और परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है.
And in the next verse, he is saying that.
और अगले वचन में कहता है.
If we say that we have fellowship with him, means fellowship with God.
और वो कहता है कि यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, मतलब परमेश्वर के साथ.
We are saying that we know God, and we are saying that we have fellowship with God.
अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके साथ हमारी संगति है.
And at the same time, we are walking darkness. We are living in sin.
और उसी समय हम अंधकार में चलते हैं और जीवन पाप में बिताते हैं.
Then he is saying that then there is some problem. We are lying actually. There is no truth that you. In your saying that you fellowship with God who is light.
और वहाँ पर कोई समस्या है हम झूठ बोल रहे हैं हमारी सच में परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है.
Actually you are practicing you are not practicing truth you are practicing a lie.
और सत्य पर आप नहीं चल रहे लेकिन झूठ का अनुसरण आप कर रहे हैं.
So this important when we say that we have fellowship with God. When I know God. I am a believer. I am a disciple. When you say. And at the same time, if we walk in darkness, we have to ask ourselves.
और बहुत ही मुख्य बात है अगर कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उसके साथ मेरी संगति है, उसका मैं चेला हूँ, लेकिन उसके साथ अगर मैं अंधकार में चलता हूँ, तो उसे हमको जांचना है.
God is light, and in Him there is no darkness at all.
परमेश्वर ज्योति और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है.
And then how if I am fellowship with God, how can I walk in darkness?
और अगर परमेश्वर के साथ संगति मेरी है, तो कैसे मैं अंधकार में चल सकता हूँ?
How can I walk in hidden things?
और कैसे मैं गुप्त बातों में चल सकता हूँ?
How can I harbor hidden secret sins in my life?
और कैसे मैं गुप्त पापों को अपने अंदर रख सकता हूँ?
and in my life lot of gray areas
aur bahut sare aise jo kshetra hai
mere jeevan mein love to and desire that no one should come to know about, even God should not come to know about.
ऐसे क्षेत्र जो मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसे देखे नहीं, यहाँ तक कि परमेश्वर भी उसको जाने नहीं.
If that is our life, we are speaking a lie. We are not pricing truth.
अगर ऐसा हमारा जीवन है तो हम झूठ के हैं और हम सत्य के पीछे नहीं चल रहे हैं.
And he is saying that if we walk in the light as he himself is in the light.
अगर हम सत्य में चलेंगे और ज्योति में चलेंगे जैसे वो खुद एक सत्य और ज्योति है,
that will translate into fellowship with one another.
और उसी के द्वारा हम एक दूसरे के साथ संगति कर पाएंगे.
So our fellowship, a ground for fellowship with each other is that individually we are walking in the light with Christ.
और एक दूसरे से संगति करने की जो नींव है वो है कि हम परमेश्वर के साथ एक बने रहे.
The more we walk in the light of God, the more we will have fellowship also with one another.
और जितना अधिक हम परमेश्वर की ज्योति में चलेंगे उतना ही अधिक हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकेंगे.
And that will lead to the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
और कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है.
It's good to remember occasionally that we don't lose the wonder of our salvation.
और ये हमें बार बार याद दिलाना है कि हमें उस उद्धार का जो आनंद है उसे भूलना नहीं है.
The wonder that Jesus loved a wretch like me.
और उस अनुभव को कि परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी से प्रेम किया.
A wonder that Jesus chose to give himself on the cross. He chose to decide to die on the cross on behalf of me.
और इस चीज को याद करना कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पापों के कारण उसने ये चुनाव किया कि वो क्रूस पर मारा जाए.
As we are singing, one of the words is how Jesus loved me. I have no answer. I cannot explain. Why Jesus loved me such a wretched sinner like me?
और जैसे हमने गीत में कहा कैसे परमेश्वर ने यीशु ने मुझसे प्यार किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है. कैसे मुझ जैसे पापी से उसने प्यार किया?
I have no answer. That should wonder us. I have no answer. I cannot give an explanation.
और हमारे
पास Jesus loved me such a person as me so much.
और हमारे पास कोई उत्तर या प्रतिउत्तर नहीं है कितना अधिक यीशु ने हमसे प्यार किया है.
But we should know, as you sang again, but one thing I know, his death on the cross delivered me, redeemed me from the hell.
और इस चीज को जानना है कि वो क्रूस पर गया ताकि मुझे नरक और पापों से बचा सके.
And also if we say that we have no sin,
और अगर हम ये कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है,
we are deceiving ourselves and the truth is not in us.
तो हम अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है.
So it's important that we acknowledge sin.
इससे ये बहुत ही मुख्य भाग है कि हम जान ले कि हम पाप है.
And sin becomes exceedingly sinful.
और पाप आगे बढ़कर बहुत ही पापमय हो जाता है.
We don't take sin lightly.
और हम पाप को साधारण तौर से नहीं लेते हैं.
And we have, what I mean is not that we are perfect, but our interest is to live a life without sin.
मेरा मतलब ये नहीं कि हम सिद्ध हो चुके हैं, मेरा ये कहना है कि हम एक पाप के बिना का जीवन जीने की कोशिश करें.
And I don't desire or I don't love to be living in sin.
मेरी ये इच्छा स्व इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं पाप में ही अपना जीवन बिताऊं.
My active interest is to be freed from sin and increasingly more living a life like Jesus.
और मेरी यही इच्छा होनी चाहिए कि मैं पाप से छुटकारा पाकर यीशु के समान जीवन जीऊं.
And that is a provision God has kept for us by if we confess our sins.
अगर हम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर ने यही प्रबंध अपने लोगों के लिए रखा है.
When we say that if we confess our sins, not just saying with our word.
और मतलब कबूल करना ये बात नहीं कि अपने केवल शब्दों से कुछ बातों को मान लेना या बताना.
We confess as a result of our repentance.
और हम लोग कुछ कबूल करते हैं पश्चाताप के रूप में.
सो इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड राइटियस.
यदि हम अपने पापों को मान ले वह पापों को क्षमा करने और विश्वास योग्य और धर्मी है.
टू फॉरगिव अस आवर सिंस,
पापों को क्षमा करने के लिए.
इट्स एन अमेजिंग थिंग.
और ये बहुत ही अद्भुत बात है.
इफ वी रिपेंट एंड इफ वी कन्फेस आवर सिंस, He is faithful and righteous to forgive our sins.
अगर हम पापों को मान ले पश्चाताप करें वो धर्मी और विश्वास योग्य है सारे पापों से क्षमा करने के लिए.
We normally, you know, it's good to some that simple example of a lamb falling in a pit of dirt.
और एक साधारणता है, एक उदाहरण हम ले सकते हैं, एक जो मेमना है वो एक गड्ढे में जैसे गिर जाता है.
इट हैज नो डिजायर टू फॉल इनटू दैट पिट.
और उस मेमने की कोई इच्छा नहीं होती कि वो गड्ढे में जाकर गिरे.
इवन इफ इट फॉल्स बाय चांस, इट हैज नो डिजायर टू लिव देयर एट ऑल.
और अगर वो गिर भी जाता है किसी गलती से, उसकी खुद की इच्छा नहीं होती कि वहीं पर वो रहे.
बट इफ ही स्लिप्स बाय चांस एंड फॉल्स इनटू द into the pit,
अगर वो फिसल कर उस गड्ढे में गिर भी जाता है,
it will make every effort to jump out of it and then cleanse itself.
और वो अपने सारे प्रयत्नों को करेगा वहाँ से ऊपर उठने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए.
Its desire is not to fall and not to remain there.
उसकी इच्छा नहीं कि वो गिरकर वहीं पे रहे.
So that is an example how our life should be.
और यही एक उदाहरण है कि हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए.
No desire to fall into sin.
हमारा कोई इच्छा नहीं कि हम पाप में गिरे.
And if fall also, I have no intention to remain there. I want to jump out of it and come out of it.
और अगर फिसल कर गिर भी जाते तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि तुरंत हम कूद कर वहां से बाहर निकल जाएं.
We have the desire, the Lord is there to help us to cleanse us.
और जब हमारे पास वो इच्छा होगी तब परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमें शुद्ध करेगा.
So when we confess our sins, faithful and righteous to forgive us our sins.
और जब हमारे पापों को मान लेते हैं वो विश्वासयोग्य और धर्मी है हमें क्षमा करने के लिए.
And what I love to read is and also to cleanse us from all unrighteousness.
और वहाँ पे लिखा है कि हर एक अधार्मिकता से शुद्ध करने के लिए.
If you confess our sins, he will not only forgive us all our sins.
वो जब हमारे पापों को मान लेते न केवल वो हमारे पापों को क्षमा करता है.
And he will also cleanse us from all unrighteousness.
और हर एक अधर्म से हमें शुद्ध करता है.
All means everything is included.
और हर अधर्म मतलब हर चीजें उसमें आ गई.
No, I just a little bit tasted during the last week.
और पिछले सप्ताह में कुछ मैंने अनुभव किया.
When I realized in a day some regarding some of my thing, I felt one Holy Spirit once spoke to me. I was not conscious about unrighteousness. I became aware. Holy Spirit brought into light.
और कुछ अधार्मिकता मेरे जीवन में थी और पवित्र आत्मा ने मुझ पर वो प्रकाशित किया और मैं उसको जानने लगा.
So I was when I realized did I do this?
और मुझे जब पता चला मुझे लगा ये कैसे हो सकता है?
Did that kind of unrighteousness happen out of me?
और ये कैसे अधार्मिकता मेरे जीवन से हो सकती है?
Then you know Holy Spirit encouraged me repent about it. There is a way out.
पवित्र आत्मा ने मुझे प्रोत्साहित किया कि उससे पश्चाताप करो, उसमें से एक मार्ग है.
Confess to the Lord.
और परमेश्वर के सामने कबूल करें.
He will forgive that.
और वो क्षमा करेगा.
And not only that, he will cleanse you from all unrighteousness.
उतना ही नहीं लेकिन वो हर एक अधर्म से आपको पूरी तरह से शुद्ध करेगा.
So I could really taste that the freshness when I confessed that unrighteousness which was hidden to me when God brought it to the light and I repented about it and confessed it and the assurance I received of forgiveness of sins, not only that, the assurance that he cleansed me from that unrighteousness.
और सच में उस अनुभव को मैंने चक्कर जाना कि जब मैंने अधार्मिकता को जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बताया गया था, मैंने उस ताजगी को अनुभव किया और सारे अधर्म से क्षमा किए जाने वाला अनुभव प्राप्त किया.
So it brought such freshness again back to me.
और एक अद्भुत सी ताजगी मेरे जीवन में वो लेकर आया.
So that shows unwillingly falling into a sin or falling into an unrighteousness need not make us live in condemnation.
और इसका मतलब ये है कि न जानते हुए या अनजाने में हम कोई पाप कर बैठते हैं वो चीज हमारे जीवन में एक दोष की भावना नहीं लानी चाहिए.
When we repent and confess, Jesus forgives us and he cleanses from all unrighteousness.
जब आप कबूल कर लेते, पश्चाताप करते, सारे अधर्म से परमेश्वर आपको शुद्ध करता है.
Our conscience can be as pure as if we had never done such a thing.
और हमारा विवेक तब इतना शुद्ध हो जाता है जैसे कि हमने कभी पाप ही न किया हो.
And it is also important, it's something which encourages me when there was time in my life early in my Christian. Can God forgive such a thing which I did? Such an evil, such a depth of sin. Can he forgive me?
और कई बार ये प्रोत्साहित करने वाली मेरे जीवन में बात रही कि कोई पाप ऐसे करने के बाद मुझे लगता था क्या परमेश्वर सच में इतने बुरे, इतने मतलब गिरे हुए पाप को भी क्या क्षमा कर सकता है?
And I've seen many believers who think that Jesus may forgive many, but such and such sin he cannot forgive, he will not forgive. और there are people who believe that believers.
और कई विश्वासी इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ कुछ पापों को क्षमा कर सकता है लेकिन कुछ बहुत ही बड़े और गिरे हुए पापों को शायद वो क्षमा नहीं कर सकता.
And as a result, they live in condemnation.
और उसका परिणाम क्या होता है? वे दोष में जीवन जीते हैं.
But beyond what we can comprehend, Bible says that I will forgive you all your sins and I will cleanse you from all your unrighteousness.
और वचन कहता है हमारी समझ से परी ये बात है, वो पापों को क्षमा करता है और सब अधर्म से हमें शुद्ध करता है.
All means all. What is the meaning of all? Anything is exempted from that.
और यहाँ पे सब अधर्म लिखा है. सब मतलब सब.
It is beyond our comprehension.
और ये हमारी समझ से परे है.
Everything.
उसमें सब कुछ आ जाता है.
So that is the power of forgiveness.
और यही एक क्षमा का ताकत है.
That is the power of cleansing from all unrighteousness.
और ये अधर्म से शुद्ध किए जाने की ताकत है.
So that is very important for us to remember. I remember a time, a season in my life, I used to live in condemnation.
और ये याद करना बहुत जरूरी. एक समय मेरे जीवन में था, मैं उस दोष में जीवन बिताता था.
God cannot forgive such a sin.
और ये मानकर कि परमेश्वर ये पाप को क्षमा नहीं कर सकता.
But that is not from God, it is from the devil.
और ये परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन शैतान की ओर से था.
You know that well-known story in the Bible in John chapter 8.
और यूहन्ना 8 के अंदर हम उस कहानी को पढ़ते हैं.
When adulterous woman was caught in that adultery and Pharisees and they brought him to presence of Jesus.
और जब एक व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाती है और फरीसी लोग उसको पत्थरवा करने के लिए यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं.
And they surrounded Jesus and told, "We have brought her such a sinner, this sinful woman."
और उस स्त्री को वहां पर लेकर आते, उसके चारों ओर कहते, यीशु से कहते कि हमने इसको पाप में पकड़ा है.
As per Moses law, she is supposed to be stoned to death.
और वे कहते हैं, वे मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये पत्थरवा करके इसको मार देना चाहिए.
And they came with the stones, with a willingness to stone her, to put her to death.
और अपने हाथों में पत्थर लेकर आए ये इच्छा के साथ कि उसको मार देंगे वो.
And they wanted to know, they wanted to test Jesus. They wanted to know what Jesus would tell about it. Is something against Moses' law, will he speak?
और ये वो यीशु की परीक्षा करना चाहते थे, ये मानकर कि क्या यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था के विरोध में कुछ कहेगा.
But Jesus stooped himself, he didn't lift his hand, he just kept on writing on the ground with his finger.
और वहां पर यीशु ने कुछ बोला नहीं, वो नीचे बैठकर अपने उंगलियों से कुछ जमीन पर लिख रहा है.
When they insisted, He lifted his head and told.
और जब उन्होंने दबाव किया, तब उन्होंने यीशु ने ऊपर उठकर उनसे बात की.
Whoever among you who have no sin, let him throw that first stone.
और यीशु ने कहा कि तुम में से जिस किसी ने कभी पाप न किया हो, वही पहला पत्थर उठाए.
A very simple thing.
बहुत ही साधारण बात है.
So that convicted them about their own sin.
और उसके द्वारा उनको खुद के पापों का आभास हुआ.
One after the other, they threw their stones and went their way.
और एक के बाद एक वो पत्थर नीचे गिराने लगे और एक बार चले गए.
And only that woman was left there.
और वही स्त्री वहीं पर थी.
And Jesus asked her, "Where are the people who condemned you?"
और यीशु ने उस स्त्री से कहा कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने तुझे दोषी ठहराया?
And he said, "I forgive you. Sin no more."
और उसने कहा कि अब से आगे तू पाप मत कर.
And that is Jesus wants to tell each one of us. I forgive you now.
और यही यीशु मसीह हम सबों से कहना चाहते हैं कि मैं आपको क्षमा करता हूँ.
And sin no more.
और आगे से पाप मत करो.
That should be our desire.
और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए.
Jesus forgiven, I am not taking it lightly.
और यीशु ने जो हमें क्षमा दिया, उसे हम साधारण तौर पर न ले.
My desire is not to sin at all.
और मेरी इच्छा ये नहीं होनी चाहिए कि मैं पाप करता रहूं.
And may God help us also that what Jesus told, that reflecting, echoing in our lives, sin no more.
और यही हम हमारे जीवन के अंदर हम चुनौती देते रहे, यीशु ने जो कहा कि पाप मत कर.
On one side we receive that largeness of the heart of God to forgive us.
एक तरफ हम देख सकते कि परमेश्वर का बड़ा दिल जो हमें माफ करने के लिए तैयार है.
And we receive that forgiveness, such a relief and comfort.
और वो क्षमा को प्राप्त करने से इतना एक आराम हमारे जीवन में आता है.
And on the other side we receive that encouragement and motivation, sin no more.
और उसके बाद हम एक प्रोत्साहन को हम पाते हैं और वो है कि पाप मत कर.
So that is something to we should preserve in our heart.
और ये हमारे हृदय में हम जांच के देखें.
And it is important that we none of us live in a life of condemnation.
और ये बहुत ही महत्व की बात है कि हम में से कोई भी उस दोष में जीवन ना बिताए.
When we encourage about repentance and confessing our sins, we are not talking about condemnation.
और जब हम पश्चाताप के बारे में, पापों को कबूल करने के बारे में बात करते हैं, हम दोष में न जिए.
Now we can understand this. We can understand this. Now there are two incidents of the Bible. One is the life of Peter.
हम दो भाग में हम देखते हैं कि एक पत्रस का जीवन था.
Peter did properly. I think none of us would do that.
और पत्रस ने वो चीजें की जो हम में से कोई भी शायद नहीं करेगा.
He denied Jesus.
उसने यीशु का इनकार किया.
He lied that he never knew Jesus.
उसने झूठ बोला कि वो कभी यीशु को जानता ही नहीं था.
And when a servant woman asked, "Are you also not with him?" He even cursed.
और एक दासी ने उससे कहा कि क्या तू उनमें से नहीं है? तब उसने यीशु मसीह को कोसा.
I believe none of us would go to that extent. such an explicit, open renouncing Jesus and cursing him. No, I never knew him. I had no part. I never accepted him. I never knew him. And we will not do, probably.
और मुझे नहीं लगता हम में से बैठे में से इतना ज़्यादा कोई ये स्तर पर जाके यीशु मसीह का इनकार करे, सबके सामने कहे कि मैं उसको नहीं जानता, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता या नाता नहीं है।
But Peter later was convicted about the depth of his sin.
और उसके बाद पत्रस को आभास हुआ, उसको एहसास हुआ अपने पाप का।
After Sunday, what did I do?
उसको ये एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है?
I renounced my savior, my master.
मैंने मेरे उद्धारकर्ता स्वामी को पूरी तरह से इनकार दिया है।
I even said that I didn't know him.
और मैंने ये भी कह दिया कि मैं उसको नहीं जानता।
I even cursed him. What did I do?
और मैंने क्या किया? मैंने तो उसको कोसा भी है।
But it's written he bitterly cried.
उसके बाद लिखा वो बहुत फूट-फूट कर रोया।
And you know Jesus restored him such an extent that as if he had not done that.
और यीशु मसीह ने उसको और एक बार पुनर्स्थापित किया जैसे कुछ उसने किया नहीं।
So that is an example of true repentance and restoration.
और यही एक सच्चा उदाहरण है एक सच्चे पश्चाताप का और पुनर्स्थापित किया जाना।
And after that Jesus entrusted him all the responsibility of his sheep.
और उसके बाद यीशु ने अपने भेड़ों की सारी जिम्मेदारी पत्रस को दी।
Jesus is no more seeing him as a person. See, this man is the one who told everybody that he did not knew me.
और यीशु मसीह बाद में उसको ये नहीं कहता कि वो वही पत्रस था जिसने मुझे एक बार इनकार किया था।
When he repented, he such a clarity of conscience he received, and Jesus entrusted much more responsibility to him than before.
और जब पत्रस ने पूरी तरह से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी।
So that is the power of repentance and the restoration God can give to each one of us.
और यही एक पश्चाताप की सामर्थ है और वही पुनर्स्थापित प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है।
And I seen in my personal life people who had done an utter unspeakable filth when they came to Christ, the forgiveness they received and the God gave them such a crystal clear conscience and confidence of forgiveness and restoration.
और ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे, परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करके परमेश्वर से उन्होंने वो पुनर्स्थापित को प्राप्त किया।
God wants each one of us to live in such a crystal clear conscience.
और परमेश्वर चाहता है कि हम वो बहुत ही शुद्ध विवेक के अंदर जीवन जिए।
And another example is the example of Judas.
और दूसरा उदाहरण है यहूदा।
Judas also maybe did something less intense than Peter, because he did not tell anything. His desire was to earn some money.
और यहूदा ने शायद पत्रस के उसके तुलना में कोई इतना बड़ा नहीं पाप किया था, लेकिन कुछ पैसों की लालच उसमें थी।
He told Jesus I love and everything, but he just secretly betrayed him. He did not speak in open his mouth and spoke anything against Jesus.
और यहूदा ने जाकर बाहर किसी अपने शब्दों के द्वारा यीशु के विरोध में नहीं बोला, लेकिन वो पैसों से प्यार करता था।
But he instead of repenting, he just condemned himself. He just suicided.
और उसने पश्चाताप करने के बजाय दोष की भावना के अंदर जाके सुसाइड करने का सोचा।
कंडेमनेशन कैन लीड टू सच थिंग्स।
और जो दोष है जो ऐसी चीजों के पीछे में लेकर जा सकता है।
व्हेन वी रीड ना आई जस्ट वांट टू रीड टू वर्सेस, वन इज रोमियो चैप्टर 8,
रोमियो 8 अध्याय
33 और 34। रोमियो 8:33-34। Who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies.
परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है।
This something should continuously speak. Who is the one who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies.
और यहाँ पे लिखा है कि कौन है जो परमेश्वर के चुनों को दोष ही ठहराए, लेकिन परमेश्वर इनको धर्मी ठहराता है।
Who is the one who condemns? Christ Jesus, who died, he is the one who intercedes for us.
और वहाँ लिखा है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, मुर्दों से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर निवेदन करता है।
So we should remember that it is God who justifies me.
और हमें ये याद रखना है कि वो परमेश्वर है जो हमें धर्मी ठहराता है।
When I repent and confess, along with the forgiveness, he also justifies me.
और जब मैं पापों से माफ माफ कबूल करता हूं, पश्चाताप करता हूं, क्षमा के साथ वो मुझे धर्मी ठहराता है.
It is God who does that, and no one has the power right to condemn me then.
और परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है, उसके बाद किसी के पास ताकत नहीं मुझे दोषी ठहराने के लिए.
That is why it is written, who will bring a charge against God's elect.
और इसलिए वचन कहते हैं कि कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए में दोषी ठहराएगा.
Another verse which tremendously helped me is
दूसरा वचन
Romans chapter 14:22.
रोमियो 14:22.
Romans 14:22. Yeah. The faith which you have as your own conviction before God, happy is he who does not condemn himself.
तेरा जो विश्वास उसे परमेश्वर के सामने मन में रख, धन्य वो जो ठीक समझता है वो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता.
So I remember a time when I was living in a condemnation.
और ऐसा एक समय था जब मैं पाप के दोष में जीवन जी रहा था.
A time when I was reading lot of good messages and all I was hearing.
और बहुत सारे अच्छे संदेशों को जब मैं सुन रहा था.
Then I used to think it is not for me. I can't live such a life.
और तब मैं सोचता था मैं ये मेरे लिए संदेश नहीं, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता.
It's for those holy religious people, not for me.
और ये ऐसे धर्मी शुद्ध जो पवित्र जो लोग हैं उनके लिए ये वचन है.
I hear all those words and I used to condemn myself. After the meeting, I'd go so sad and depressed.
और उन संदेशों को सुनकर मैं उस सभा से बहुत ही निराश होकर दोषी होकर जाता था.
And that used to steal away all my happiness.
और वो
so visible on my face.
और सारा आनंद मेरा चुरा लेता था, वो मेरे चेहरे पे दिखता था.
But this word spoke to me. If you condemn yourself, you will lose your joy.
और ये वचन ने मुझसे बात की, अगर तुम अपने आप को दोषी ठहराओगे तो अपना आनंद खो बैठोगे.
I felt like God was telling me, I have made you righteous, then why you are condemning yourself?
मुझे ऐसा लगा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे धर्मी ठहराया, तो तू क्यों अपने आप को दोषी ठहराता है?
I have forgiven your sins which you repented and confessed, and I have cleansed you all unrighteousness, then why you are condemning you? You have no right to condemn yourself.
और मैंने तेरे सारे पापों को जो तूने कबूल किए उसे क्षमा किया है, तो क्यों तू अब अपने आप को दोषी ठहराता है?
And when you condemn yourself, this is the result. You lose all the joy.
और अगर तुम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो, उसका मतलब कि तुम अपने आनंद को पूरी तरह से खो दोगे.
That expression phrase like the happiest one who does not condemn himself.
वचन जैसे कहते हैं वो आनंदित मनुष्य है जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता.
So I remembered it really liberated, set me free.
और इस वचन ने मुझे सच में आजादी दी.
Devil is so happy if we condemn ourselves.
शैतान बहुत खुश हो जाता है जब वो अगर हमको दोषी ठहराता है.
He is doing that anyway. And we are also helping and condemning ourselves.
और वो जब हमारे ऊपर कहते हैं, हम भी उसकी मदद करते हैं कि हम अपने आप को दोषी ठहराएं.
And there are even some people, including some preachers, who will try to condemn us.
और ऐसे कलीसिया में कुछ लोग होंगे या जो हमें दोषी ठहराने में सहायता करते हैं.
We should reject all condemnation.
और उस सारे दोष को हमें दूर करना है.
We should not receive a message which condemns us.
हमें कोई भी संदेश एक दोष की भावना के साथ नहीं लेना है.
It is not from God.
और ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता है.
So may God really help us. To live a fresh, renewed Christian life.
और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ऐसा मसीह जीवन जो ताजगी से भरा हुआ है और नया जीवन है.
Let's continue to walk in the light.
और हम उस ज्योति में चलते रहे.
Walking in the light means I am renouncing sin and my desire to follow Jesus.
और ज्योति में चलना मतलब पापों को पीछे त्याग कर अब हम यीशु के साथ चलना चाहते हैं.
It is not a passive thing. I have interest. My interest is not to live in my past. Sinful life.
अभी मेरी रुचि मेरे भूतकाल के पापमय जीवन को जीने में नहीं है.
I am committing myself. I am expressing my desire and commitment to leave those past.
अभी मेरा
make progress in my walk with Jesus.
अभी मेरा समर्पण यह है कि पिछले उस पापमय जीवन को छोड़कर अब मैं बढ़ोतरी करते जाऊं परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में.
May God help us to live a life which is fresh.
और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे उस ताजगी भरे जीवन को जीने.
God has made such a provision that our life can be renewed every day.
परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि प्रतिदिन हम नए होते जाए.
Our life can be like an eagle, ever making progress.
और हमारा जीवन ऐसा हो सकता है उकाब के समान जो हमेशा आगे बढ़ता जाए.
Amen.
Amen.
1 John 1:4 says.
पहला योहन्ना 1:4 ये कहता है.
We write this to make our joy complete.
और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए.
So that is the reason John was writing to them.
और यही कारण था जो यूहन्ना उन लोगों को इस बारे में लिख रहा है.
That their joy will be full.
ताकि उनका आनंद पूरा हो जाए.
So many times in my life I've seen that when I'm in the presence of God and I'm having fellowship with God, there is joy.
और मैंने अपने जीवन में देखा है जब मैं परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में उसके साथ संबंध में हूँ तब उस समय मेरे जीवन में आनंद है.
So whenever I am not having that joy, I always feel that there's something somewhere I must have gone away from the presence of God. That's why I do not have that joy.
और जब भी मेरे जीवन में आनंद नहीं होता तब भी ये मुझे लगता है कि शायद मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ इसलिए मेरे जीवन में आनंद नहीं है.
So I was waiting somewhere and this is the word which came to me that why I was thinking why there is joy lacking in me.
और जब मैं एक जगह पर था मैं मेरे जीवन में इस वचन से क्यों मेरे जीवन के अंदर आनंद की कमी है.
So that is what came to me in this verse. It says in verse 7.
और सात वचन में लिखा है.
That if we walk in the light.
और जैसा वह ज्योति में है.
If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another.
और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी अगर ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते
हैं. And the blood of Jesus his son purifies us from all sin.
और उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है.
So if I am walking with fellowship with him, I can always experience that purification in my heart.
और जब मैं यीशु के साथ संगति में चल रहा हूँ तब मेरे हृदय में हमेशा उस शुद्धिकरण को अनुभव कर सकता हूँ.
If I'm walking in the light, then only I can see something.
और जब मैं ज्योति में चलूंगा तभी मैं इन बातों को देख पाऊंगा.
In John 3,
यूहन्ना तीसरा अध्याय,
John 3:20 it says,
3:20,
everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear that his deeds will be exposed. And in verse 21 it says, whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what he has done through God.
क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं.
So if I want to live in sin, I will not come to the light.
और अगर मैं पाप में जीवन जीना चाहता हूं तो मैं ज्योति के निकट नहीं आऊंगा.
Because if I come to the light, then all my sin will get exposed.
अगर मैं ज्योति के पास आऊंगा तो मेरे सारे पाप प्रदर्शित हो जाएंगे.
But it is good for my sin to get exposed.
लेकिन ये अच्छी बात है कि मेरे पाप बाहर निकले.
Because when my sin gets exposed and if I confess my sin, I get forgiveness.
और जब मैं अपने पापों को कबूल करता हूं वो बाहर उसको बताता हूं तब मुझे क्षमा मिलती है.
When we hide our sins, there is condemnation.
और जब हमारे पापों को छिपाते हैं तब दोष आता है.
When I am not aware of my sin, because I am not coming to the presence of God.
और जब परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आता मैं अपने पापों को नहीं जान पाता हूँ.
One important thing about walking in light is living in truth.
और मुख्य बात परमेश्वर की ज्योति में चलना मतलब परमेश्वर के सत्य में जीवन जीना.
So in that verse also in John says always that those who say that they have no sin, they are lying, they are living in lie.
और जैसे हमने पढ़ा कि जो ये कहते कि हम में पाप नहीं है वो झूठ है.
So if I am saying that any sin I do in my heart or anything, when God shows this to me, if I try to say that no, I have not sinned, then I am living in lying. I am lying.
और अगर मैं कोई पाप करता हूँ परमेश्वर मुझे वो पाप बताता है और मैं वो पाप को नहीं मानता इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ अंधकार में जी रहा हूँ.
सो देन देयर विल बी नो फॉरगिवनेस आई कैन रिसीव.
और तब मैं कोई माफी प्राप्त नहीं कर सकता.
सो इफ गॉड टेल्स मी इमीडिएटली आई से दैट यस दैट इज माय फॉल्ट आई हैव सिन्ड देन आई कैन रिसीव फॉरगिवनेस.
और जब कोई परमेश्वर पाप दिखाता है उसको अपनी गलती मानकर और उसको पश्चाताप करता तब मुझे माफी मिलती है.
सो When we say about truth, when we speak about truth, I need to examine myself whether I am always speaking the truth.
और सत्य के बारे में जब हम बात करते हैं कि हम सच में हर बार सत्य बोलते हैं.
Recently, there were audits which were happening about my work in my company.
और हाल ही में मेरे कंपनी में मेरे काम के प्रति एक ऑडिट हो रहा था.
And then somebody asked me something like, do you pick up this report when this person is not there?
और मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप इस रिपोर्ट को पिकअप करते हैं लेते हैं जब ये आदमी नहीं है वहाँ पर.
So actually I am the backup, I need to pick up that report.
और मुझे वो रिपोर्ट पिकअप करना चाहिए.
But I did not do that. But when he asked me, I immediately said yes.
और मैंने वो नहीं किया, लेकिन जब उसने मुझे पूछा तो मैंने हाँ कह दिया, हाँ मैंने किया ये.
So I was thinking that then God immediately spoke to me that this is a lie which you spoke.
और इसके बाद परमेश्वर तुरंत मुझे बताया कि तूने झूठ बोला है.
Go and tell him that you did not pick up the report.
और उसको जाकर बोल कि तूने वो रिपोर्ट नहीं खींचा वहाँ से.
So it was very difficult for me.
और ये मेरे लिए बहुत कठिन था.
Then God spoke to me that 100 years after 100 years when you think about it you will regret that you said this lie.
और 100 साल के बाद तुम इस पे बहुत ही खेद बनाओगे कि तुमने ये झूठ बोला.
So I could when I thought about that when I'm 100 years from now or whenever I'm standing before the judgment seat of Christ this small thing which I could not say I would be regretting there.
और 100 साल के बाद परमेश्वर के न्यायासन के सामने शायद मैं अपने आप को बहुत ही खेद महसूस करूंगा क्योंकि मैंने इस झूठ को बोला.
I could easily go and rectify that.
और मैं आसानी से जाकर उसको सुधार सकता था.
I could do that because when we are only thinking about this present thing, I might lose something, I might lose my ratings or something. We only think about this thing.
और कि वर्तमान चीजों को हम सोचते हैं कि शायद ये करने से मेरा रेटिंग कम हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा.
But we don't think about what is there after some when I stand before judgment seat. I don't think about that.
लेकिन हम ये बारे में उसके बारे में नहीं सोचते कि वो समय कैसे होगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे.
That's why I have to always think about that.
इसलिए मुझे हमेशा उस चीज को सोचते रहना है.
And I have to be righteous in all small things which God shows me.
और हर एक छोटी चीज जो परमेश्वर मुझे दिखाता है उसमें मुझे धर्मी होना है.
Praise God for the words which spoke to us.
प्रभु की स्तुति हो उन वचनों के लिए जो हमने सुना.
God was telling me that about this condemnation thing. God was speaking to me. God was speaking to me about the condemnation that God, part that brother spoke.
और परमेश्वर इस चीज के बारे में मुझे बता रहा था जो हमने सुना दोष के बारे में.
I was thinking that woman who was caught in adultery. I believe that till the time she was brought to Jesus, continuously she was being condemned.
और जो उस स्त्री के बारे में व्यभिचारी स्त्री के बारे में सोचता हूँ कि जब तक वो यीशु मसीह को उस पास वो लाई गई तब तक निरंतर उसको वो दोष लगाते रहे.
Those Pharisees must be continuously accusing her and dragged her to Jesus.
और वो फरीसी लोगों ने उसको खींचा होगा और वहां तक उसको दोष लगाते हुए यीशु मसीह के पास लाए होंगे.
She must have been really down, feeling down. But when she heard the voice of Jesus, she heard the voice of Jesus and all condemnation went away from her life.
उस समय बहुत ही वो नीचा महसूस करती होगी, लेकिन जब यीशु का आवाज उसने सुना तो पूरा वो दोष चला गया वहां से.
That's what God was telling me. I need to listen to the voice of Jesus first before I hear the voice of man who condemns me.
और मुझे सबसे पहले यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज को सुनना इससे पहले कि मनुष्य की आवाज जो मुझे दोषी ठहराती उसको मैं सुनूं.
Or the voice of the devil who is always there to accuse and condemn me.
और शैतान की हमेशा आवाज जो है मुझे दोष लगाने के लिए होती है.
I was thinking of this verse in Romans 7.
रोमियो 7 अध्याय.
In 24
और 24 वचन.
Here Paul is crying out, wretched man that I am.
मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ.
If we take just that word, just like that word, then we feel so it's so condemning word. But in the verse below it says, thanks be to God through Jesus Christ our Lord.
और जैसे हम इस वचन में देखते हैं मैं कैसा अभागा मनुष्य, ये इतना एक वाक्य ही दोष से भरा हुआ, लेकिन उसके आगे के वचनों में देखते हैं कि वो आगे परमेश्वर को धन्यवाद देता है.
That he says that through Jesus I can have victory.
और वो कहता है कि यीशु के द्वारा मुझे विजय मिलता है.
सो दैट्स वॉट गॉड वॉन्ट्स मी टू ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन गॉड शोज मी माई सिन ही डजेंट वॉन्ट मी टू रिमेन इन दैट बट बियॉन्ड दैट देर इज समथिंग माई गॉड इज एबल टू सेव मी फ्रॉम माई सिन.
और जब परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में कोई पाप दिखाते उस पाप में न बने रहते हुए, लेकिन उस पाप से बाहर निकलने के लिए कि परमेश्वर योग्य है वहां से निकालने के लिए.
When I live in condemnation, I will condemn others also through my life, through my words.
और जब मैं अब खुद एक दोष के जीवन में जीवन जीता हूं तब मैं औरों को भी मेरे शब्दों के द्वारा दोषी ठहराता हूं.
When I have not seen the mercy of God, I will be unmerciful to my wife.
और जब मैं अपने खुद के जीवन में परमेश्वर की दया को ग्रहण नहीं करता तब मैं अपने पत्नी के साथ भी दया के साथ व्यवहार नहीं कर पाता.
I really need to see how much God was merciful to me, how much he loved me.
और मुझे सच में यह जानना है कि कितना परमेश्वर ने मुझ पर दया की, कितना अधिक प्रेम उसने किया है.
As brother spoke that I need to know the wonder of his love.
मुझे सच में उस अद्भुत बात को जानना है उसके प्रेम के बारे में.
then it will be so easy for me to always forgive and never judge others. How much ever times they have done evil to me.
और तब मेरे लिए बहुत आसान होगा, कितना भी उन्होंने मेरे विरोध में बुरा किया होगा, लेकिन उन्हें माफ करना आसान हो जाएगा.
Have I seen the how much God has borne with me, the forbearance of God?
क्या सच में हमने देखा है कि परमेश्वर ने कितना अधिक सहन किया हमारे साथ?
Then it will be easy for me to bear with others.
उससे मुझे सहायता मिलेगी औरों के साथ सहन करने के लिए.
Even if that patience and bearing with my wife and others. I really need to see how God was patient and bearing with me.
और खासकर धीरज धरना पत्नी के साथ और लोगों के साथ, याद करते हुए कि परमेश्वर ने सच में मेरे प्रति कितना धीरज धरा है.
Maybe I will not with my mouth I will not judge others, but in my heart do I judge others.
मेरे शब्दों से शायद मैं औरों का न्याय नहीं करता, लेकिन मेरे हृदय से मैं किसी का न्याय करता हूँ.
Do I consider them as nothing because of some sin in them?
मैं उनको उनके पापों के कारण कई बार मैं उनको तुच्छ जानता हूँ.
लाइक द Pharisees also had that nature. They never could see their own sin, but they could see the sin of others and always were there to put them down.
और फरीसी के अंदर भी ऐसा हृदय था, अपनी गलतियों को नहीं देख पाते थे, लेकिन औरों को हमेशा नीचा दिखाने और दोषित करने में वो लगे रहते थे.
आई रियली वॉन्ट द हार्ट ऑफ जीसस दैट ही कुड सी द सिन इन दैट वुमन सो क्लियरली, बट ही स्टिल चोज टू फॉरगिव.
मुझे यीशु के समान वो हृदय चाहिए कि वो बहुत ही आसान साफ रीति से वो पाप उस स्त्री के जीवन में देख पाया, लेकिन फिर भी उसको क्षमा कर पाया.
He chose not to condemn.
और उसने उसको दोष नहीं ठहराया.
I want this nature of Jesus to always forgive and never to condemn others.
और ऐसा स्वभाव मुझे चाहिए कि प्रभु हमेशा मैं स्वभाव औरों को माफ करूं और किसी को दोषी न ठहराऊं.
And not to condemn myself also.
और खुद को भी मैं दोषी न ठहराऊं.
It says that it actually in Romans if you see it's the Holy Spirit that that spirit of that in Romans 8:2 it says the spirit of life in Christ Jesus. Or that spirit is what I need in my life that will free me from all condemnation.
और रोमियो 8:2 में जैसे कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है.
It brings to my remembrance all the words that God encourages us with.
और ये मुझे याद दिलाता है वो सारे वचन जिससे परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है.
I need to always recognize the voice of the devil because he is always after us to accuse and condemn us.
हमें हमेशा शैतान की आवाज को भी पहचानना है क्योंकि हमेशा हमें दोषित करने के लिए वो रहता है.
My God will show me my sin but will provide me a way of escape so that I will be able to overcome that.
और परमेश्वर मुझे जरूर मेरे पाप को दिखाएगा, लेकिन उसमें से एक मार्ग भी निकालेगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं.
He will never condemn me.
और वो मुझे कभी दोषी नहीं ठहराएगा.
So I need to really practice this in my own life.
और इसी को मुझे मेरे जीवन में सतत करना है.
Praise and thank the Lord.
और प्रभु की स्तुति हो.
In this area, really, I myself need to see how far I am there in the light.
और इन क्षेत्र के अंदर मुझे अपने जीवन में झांक कर देखना है कि कितना अधिक मैं ज्योति से दूर हूँ.
How much I am walking in the light.
और कितना अधिक मैं ज्योति में चल पा रहा हूँ.
Because walking in the light is something where I am reflecting, spiritual awareness.
और ज्योति में चलना इसका मतलब यह है कि आत्मिक उस बात को जानकारी में जीना.
बिकॉज वन ऑफ द मीनिंग इन द डिक्शनरी फॉर लाइट इज स्पिरिचुअल अवेयरनेस.
और लाइट जो है, जो ज्योति है, उसका डिक्शनरी में अर्थ यह है कि आत्मिक जानकारी को रखना.
हाउ मच आई रियली टेक इट इन टू माई लाइफ.
कितना अधिक मैं उसको अपने जीवन में ले पाता हूँ.
यू नो लाइट इज समथिंग विच जस्ट स्प्रेड्स, यू नो व्हेन दैट फोकस लाइक हाउ the light on top is spreading it just spreads its focus.
aur jyoti jo hai hamesha jab wo aati hai tab wo aur bhi phailti jati hai.
and as we just this morning we heard a verse from 1st john chapter 1 verse 7
aur pehla yohanna pehla adhyay 7th vachan se jaise humne dekha subah.
there it says but if we walk in the light as he is in the light.
par yadi jaisa wo jyoti mein hai waise hum bhi jyoti mein chale.
there is something which I took it to my heart where it was telling that as he is in the light means As Lord Jesus Christ was in the light.
और जैसे यहाँ पे लिखा जैसा वह ज्योति में है, इसका मतलब जैसा यीशु मसीह ज्योति में चला.
And how he was in the light, that I was just reading from John's Gospel 1.
और कैसे वह ज्योति में चला उसको हम देखते पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय.
In John's Gospel verse 1 verse 5 it says he was in the light such a way he was shining that darkness could not comprehend him.
और वहां पे वचन कहते हैं ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया.
That means, you know, the way Lord Jesus lived on this earth as light, where darkness could not comprehend.
और जिस प्रकार का जीवन यीशु मसीह ने जिया, वो ज्योति से भरा जीवन था और अंधकार उस पे ऊपर हावी ना हो सका.
There was darkness.
अंधकार वहाँ था.
And he was in the midst of darkness.
वो अंधकार के बीच में था.
But darkness could not comprehend that.
लेकिन वो अंधकार उस पर हावी ना हो पाया.
I take it to my own life.
अपने जीवन के बारे में इसे ले लेता
हूँ. How much time I allow darkness to take over my life?
कितनी बार मैं उस अंधकार को मुझ पर हावी होने की अनुमति देता
हूँ? How much time I allow sin to come into me?
और कितनी बार मैं उस पाप को अनुमति देता हूँ मेरे जीवन पर हावी होने के लिए?
As brother Biju mentioned, you know, sometime I may not show it, you know, it is there in the heart.
और कई बार जैसे भाई ने बताया, कई बार मैं नहीं दिखाता लेकिन मेरे हृदय में वो है.
यू नो समथिंग लाइक, यू नो, आई मे नॉट कर्स अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और बाय वर्ड्स आई मे नॉट कर्स, बट इन माय हार्ट आई एम ट्राइंग टू जज दैट पर्सन.
शायद लोगों के सामने अपने शब्दों से मैं किसी मनुष्य को नहीं कोसूंगा लेकिन मेरे हृदय में उसके विरोध में कुछ है.
नो मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद मी.
कई बार वो मेरे साथ होता है.
बट देन आई आस्क, यू नो, आई सेड, आई टेल गॉड, गॉड यू गिव मी दैट पेशेंस एंड हेल्प मी टू फॉरगिव एंड help me not to get to get angry about it.
और मैं परमेश्वर से धीरज को मांगता हूं कि प्रभु मैं उसको माफ कर सकूं और उस व्यक्ति पर क्रोध न करूं.
And in Matthew's gospel also Lord Jesus Christ says, you know, in chapter 5 he says that, you know, that you shine you should shine such a way that it should not be hidden.
और मत्ती 5 के अंदर भी यीशु कहता है कि तुम इस प्रकाश से प्रकाशित हो और तुम्हारा प्रकाश छिपाया न जाए.
There also he is telling the same thing that, you know, that the darkness or sin should not take over you.
वहाँ पे साफ रीति से कहता है कि पाप या अंधकार वो उस पर हावी नहीं होना चाहिए.
How much time I allow myself to get into darkness or darkness to overcome me?
कई बार मैं अनुमति देता हूँ वो पाप या अंधकार मुझ पर हावी होने के लिए.
But one good thing is like, you know, as we just now read from Romans chapter 8 that you know that not to condemn ourselves, that way God has not allowed that.
और एक अच्छी बात जो हमने रोमियो 8 के अंदर पढ़ा कि हम अपने आप को दोषी न ठहराए, परमेश्वर ऐसी अनुमति नहीं देता है.
Because more I condemn myself, what I do is I am moving away from light and I am moving away from fellowship.
और मैं अपने आप को जितना अधिक कोसता हूँ या अपने आप को दोषी ठहराता हूँ, मैं उतना अधिक प्रकाश से और संगति से दूर जाता हूँ.
Moreover, like, you know, when I look at my wrong things, I really try to put myself away from God.
और जब मैं अपने बुराई को देखता हूँ उतना अधिक मैं परमेश्वर से अपने आप को दूर करने की कोशिश करता हूँ.
But rather, you know, a beautiful verse in 1 John chapter verse 9, it says, when I really confess with my heart and tell, yes, Lord, I was away from the light, there, you know, you get back that power.
लेकिन उसके बजाय जैसे ही पहला यूहन्ना 1:9 के अंदर लिखा है, जब अपने पापों को मान लेते विश्वास योग्य हमें माफ करने के लिए, तब ऐसा करने से हम ज्योति में आते हैं.
I really thank God for this wonderful verse of encouragement which God gave us this morning time.
और आज सुबह परमेश्वर ने अद्भुत प्रोत्साहन का वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद देता
हूं. It's not like it just not the word light, it is really what I really take it as into my life.
और सच में ये वचन मैं अपने जीवन में लेता हूं.
And how I really walk into it every day.
और कितना अधिक मैं उसमें चल पाता हूं प्रतिदिन.
Because every day, you know, every week, you know, I am really reminded with, you know, wonderful words of encouragement, which I really thank God for that.
और प्रतिदिन प्रति सप्ताह परमेश्वर अद्भुत उसके वायदों को याद दिलाता है, वो बहुत ही अच्छी बात, और मैं धन्यवाद करता हूँ उसके
लिए. In other words, you know, I would really thank God, telling them, you know, God is reminding me my mistakes or where I am lagging back.
और इसका दूसरे शब्दों के अंदर परमेश्वर मेरी गलतियों को दिखाता है कि कहाँ मैं उस कमी में चल रहा हूँ.
I really thank God for this verse.
और इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता
हूँ. In Jesus' name, Amen.
यीशु के नाम से आमेन.
Praise God.
की स्तुति हो.
Just two things which I liked about today's message is, first thing is condemning ourselves. I think Satan uses this weapon against each and every believer.
और दो चीज़ें मुझे आज के संदेश से बहुत अच्छी लगी. पहली चीज़ कि अपने आप को बारे में दोषी ठहराना, शैतान ये बहुत उसे बहुत अच्छा लगता है कि हमें दोषी ठहराए.
Because we know the fact that directly, indirectly, Satan can't attack us without Lord's permission.
और हम ये जानते कि शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना हम पर हमला नहीं कर सकता.
But then one thing he can do is try to discourage us by showing us all our past sins.
और लेकिन एक चीज़ है, वो हमें निराश कर सकता है हमारी पिछली सारी गलतियों को दिखा के.
I think many a times even those sins which I committed always tries to, you know, come as a flashback in my life.
और कई बार उन पापों को जब मैंने किया था पिछले जीवन के अंदर वो मेरे आगे आने लग जाते हैं.
All those negative things starts coming into my mind.
और मेरे वो मन के अंदर वो नकारात्मक बातें आने लगती
हैं. And even you feel that negativity.
और वो नकारात्मक फिर आप सोचने लगते
हैं. Then suddenly you go under depressions and you know you go under all those darkness if you say.
फिर आप निराशा में जाते हैं और बहुत ही अंधकार में आप चले जाते हैं.
Like uncle said, it becomes very negative.
और जैसे बताया गया कि हम बहुत ही नकारात्मक हो जाते हैं.
I think we should understand the fact that you know once Lord has forgiven our sins, He has forgotten those sins.
और हमें ये सत्य को जानना बहुत जरूरी है. जब परमेश्वर ने हमें क्षमा किया तब उसने हमारे सारे पापों को वो भूल गया है.
Not even he has forgiven it, he has forgotten all those sins.
और केवल उसने हमें माफ नहीं किया लेकिन पूरी तरह से उन पापों को वो भुला दिया है.
I truly want to take this into my heart that okay, whatever I've done is a past, it's a done thing, closed book.
और ये मेरे अपने जीवन में मैं इसे सच में लेना चाहता हूँ कि जो भी मैंने पिछले जीवन में किया है वो सब कुछ अभी मिट चुका है, वो हो चुका है.
It can be any time. You can have a fresh start even today. You can have a fresh start even tomorrow.
और आज भी हम वो नई शुरुआत कर सकते हैं, कल भी वो हो सकता है.
But that only thing which you don't have to do is to turn back the pages and you know have okay, you can take encouragement from that. Okay, fine, I have done those things and I have come out, but then again don't get back to all those things.
उन पिछले पन्नों को हम निकाले नहीं लेकिन वहां से हम प्रोत्साहन को ले सकते कि वहां पर था, यहां पर हम आए, लेकिन उसे हम दोषित न हो.
The second thing which was about the light which we talked about.
और दूसरी चीज जो है वो ज्योति के बारे में.
Light, I think, see, one property of light is it can be stopped from going somewhere.
और एक एक ज्योति का एक भाग यह है कि उसको रोका जा सकता है कहीं पे जाने से.
यू पुट एन ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ इट, फॉर एग्जांपल अ प्रोजेक्टर, इफ यू पुट अ ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ इट द लाइट वोंट गो देयर.
जैसे प्रोजेक्टर के सामने एक अवरोध को आप कुछ रख दे वो लाइट आगे नहीं जाएगा.
आई फील देयर आर मेनी सीक्रेट चैम्बर्स विद इन माय हार्ट.
और बहुत सारे मेरे जीवन के अंदर ऐसे गुप्त क्षेत्र मेरे जीवन में है
wherein I am not allowing Jesus Christ as a light to enter in.
और इससे मैं यीशु मसीह जो एक ज्योति है उसको अनुमति नहीं दे रहा अंदर घुसने के लिए.
I think there are many chambers that might be financial chambers, there might be angry, there might be my all those relationship chambers, everything.
और कोई भी वो ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, वो आर्थिक हो सकता है या रिश्तों के अंदर हो सकता है.
I think one best part what God gave us is a you know a right to choose or you know what do you say I'm not getting the word to give a freedom of choice.
और परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छी बात हमारे जीवन में एक चुनाव करने की शक्ति हमें दी है.
We know that God is light.
हम जानते हैं परमेश्वर ज्योति है.
But then to open those chambers, it is on our hands.
लेकिन हमारे जीवन के उन गुप्त क्षेत्रों को खोलना वो हमारे हाथों का चुनाव है.
It is under my will that should I open that door of my angriness so that Jesus can come in as a light.
लेकिन वो मेरा चुनाव है कि मेरे जीवन के अंदर जो क्रोध है उसका दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को अनुमति दो आने के.
I know the fact the moment he comes in, everything would be clear.
और ये मुझे सत्य को जानता हूँ कि जिस क्षण वो आ जाएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा.
And it will condemn me like crazy.
और उसमें वो हमें दोषी ठहराए नहीं ठहराएगा.
What do you say? A condemning thing for myself. It would be a shameful thing for myself that he'll show how sinful you are within that area.
और वो क्षेत्र को अगर यीशु देख लेगा तब वो मुझे दिखाएगा कि कितना पापी और दोषी ठहराएगा वो.
I really feel that you know I am keeping that door shut because I know the fact that I am wrong.
और मैं ये सत्य को बहुत मैं जानता हूँ कि मैं जान कर कि मैं जो उस क्षेत्र में गलत हूँ फिर भी लेकिन उन दरवाजों को मैं बंद करता हूँ.
I really want to you know confess this that I like we should be opening that doors, we should allow light as Jesus Christ to enter in each and every chamber.
और हमें वो दरवाजों को खुलने की अनुमति देना है ताकि वो ज्योति जो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ सके.
See when the people come to stone that adulterous woman,
जब लोग वहां पर आए उस व्यभिचारी स्त्री को पत्थर मारने के लिए,
when Jesus Christ said that whoever has not committed sin can throw the first stone.
तब यीशु ने कहा जिसने कभी भी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे.
None of them did.
और किसी ये नहीं किया.
That clearly shows that none in this world is like free of sin.
और इसका मतलब ये बताता है कि कोई भी पाप से मुक्त इस संसार में नहीं है.
That is one thing which always bothers us that what will others think of us.
और यही हम हमेशा सोचते कि और क्या सोचेंगे हमारे बारे में.
If I confess, what will others think?
अगर मैं इस पाप को कबूल करूंगा और लोग क्या सोचेंगे.
I think no one in this world is perfect.
और इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं है.
No one is like you know righteous or something like
और
that.
और कोई भी धर्मी नहीं है.
I think I should be bold enough to confess all those sins in front of Lord.
और मुझे हियाव के साथ परमेश्वर के साथ मेरे पापों को मान लेना चाहिए.
And allow that light to show the, you know, whatever wrong, whatever shortcomings are there, and then rectify it.
और उस ज्योति को अनुमति देना है मेरे जीवन के अंदर के सारे उन गलत बातों को दिखाकर सुधारने के लिए.
I think moment I do it, I open all the doors of my life. I think that is where I will truly follow God's will.
और जब मैं सच में अपने जीवन के सारे दरवाजों को खोल देता हूँ, अनुमति देता हूँ, तब मैं सच में उसकी इच्छा को अनुसरण कर रहा हूँ.
I really wish to do that.
और सच में ऐसा मैं करना करने की इच्छा रखता हूँ.
Praise God for what I've heard.
और प्रभु की स्तुति हो.
My goal in life is to really learn from Jesus. Learn is internal life, not the external stuff he showed.
और सच में हम यीशु मसीह के बारे में जब सोचते हैं कि हम उसने बाहरी रूप में नहीं लेकिन अंदरूनी जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखाई है.
What is given in the Bible is just 30 or 40% of what Jesus did, but the rest 60-70% is what is for me to figure it out.
और वचन में 30-40% ही चीज़ें दिखाई गई कि हमें क्या करना है, बाकी चीज़ें हमें खुद से ढूंढनी है.
And as Abu Uncle was sharing about the incident of the adulteress,
और जैसे अबू अंकल ने बताया उस व्यभिचारी स्त्री के उदाहरण के बारे में,
I was just thinking what was Jesus thinking at that time.
और मैं सोच रहा था यीशु मसीह उस समय क्या सोच रहा होगा.
And that's where I have to learn.
और वहीं पे मुझे कुछ सीखना है.
We know that these Pharisees brought the woman there.
और हम जानते हैं फरीसी उस स्त्री को वहाँ लेकर आए.
And they were shouting out that she's an adulteress, we need to stone her, and you know she's full of sin.
और वो चिल्ला रहे हैं कि ये व्यभिचारी स्त्री, उसे पत्थर से मार देना चाहिए.
And just think what Jesus would be doing at that time. He was, you know, with his finger, he was writing something in the sand.
उस समय यीशु क्या कर रहा था, वो अपने उंगलियों से जमीन के ऊपर कुछ लिख रहा है.
I was just, you know, thinking about his patience level there.
और मैं सोच रहा यीशु मसीह का धीरज का स्तर सोच रहा था.
He didn't judge anyone, he didn't curse anyone, he didn't, you know, condemn the woman.
वहाँ पे उसको यीशु ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, किसी का न्याय नहीं किया.
Full of wisdom, just listening, entrusting him to the Father.
और पूरी बुद्धिमानी से उसने पूरी तरह से सुना और पिता के हाथों में सब कुछ सौंप दिया.
If I was there, I would be one of the Pharisees. Oh yeah, she's a sinner, let's stone her, take a stone and throw.
और मैं वहाँ पर होता, एक फरीसी के समान होता, तो सच में इस स्त्री ने पाप किया, इसको पत्थर से मार दो, ऐसा कहता.
But Jesus was calm, you know, he was patient.
और यीशु बहुत शांत था और बहुत ही धीरज के साथ था.
Another thing I learned there, he just spoke one line. He spoke very less.
दूसरी चीज़ वहाँ पे मैं सीखता हूँ कि यीशु ने एक ही लाइन वहाँ पर कहा.
He told the Pharisees, those who have sinned, throw the first stone.
उसने पहले कहा किसी ने अगर पाप किया नहीं हो वो पहला पत्थर मारे.
So this one incident has taught me 3 or 4 things.
और ये एक घटना से 3 or 4 चीज मैं सीखता हूँ.
Be patient.
धीरज.
Entrust yourself to the Father.
और पिता के हाथों में समर्पित करना.
Don't judge what people, you know, what people say or talk about.
और लोग जो कह रहे उस प्रकार से हमें औरों का न्याय नहीं करना.
And I was just thinking of all these things and I was applying to my life and you know it's just the opposite.
और जब मैं इन सारी चीज़ों को मेरे जीवन में लागू करने के बारे में सोच रहा था तो सब कुछ विरोध में दिख रहा था.
And I want to learn these few things from Jesus, the internal life, the personal life what he lived.
और मुझे यीशु का जो व्यक्तिगत जीवन है वो सीखना है.
And we also heard about condemning, two examples of Peter and Judas.
और जैसे हमने पत्रस और यहूदा के दोषी ठहराने के बारे में भी हमने जो उदाहरण देखे.
Well, Peter denied Jesus, but yes, he you know, asked Jesus for forgiveness, he came to the light.
और यीशु पत्रस ने जो है यीशु का इनकार किया, पश्चाताप किया और वो ज्योति में भी आया.
But on the other hand, Judas, the you know, Satan went into him and you know, he didn't come into the light, he condemned himself.
और वहाँ दूसरी भाग हम यहूदा के बारे में देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पास नहीं आया, अपने आप को वो दोषी ठहराने लगा.
One verse comes to me that Satan comes to steal, kill and destroy.
और एक वचन जो आता है कि जो शैतान जो है वो चोरी करने, घात और नाश करने आता है.
He could have, Judas could have easily, you know, asked Jesus for forgiveness because Jesus would have easily forgiven him.
और बहुत आसानी से यहूदा वहाँ पे माफी मांग सकता था और यीशु मसीह शायद उसे माफ भी कर देता.
नहीं, but he condemned himself because you know Satan was in him.
क्योंकि उसने अपने आप को वहाँ पर दोषी ठहराया जैसा शैतान ने उसने किया.
The end result is suicide.
और अंतिम परिणाम देखते उसने आत्महत्या की.
So just remember, I'm just thinking about it. You know, Satan comes to first, he'll steal your happiness, he'll, you know, remind you of your past sins and he'll destroy you.
और जब शैतान आता है, जब हमारे आनंद को ले लेता है, हमारे आनंद को लेकर वो पूरी तरह से हमें नाश करने की कोशिश करता है.
But even if you have faltered, even if you have, you know, sin, we have to go to Jesus because he is there to, you know, he is forgiven. He is like, for example, we've seen Peter when he denied Jesus, Jesus forgave him.
और अगर हम गिर भी जाते, पाप भी करते, उस पत्रस के समान जैसे हमने देखा, उसके पास जाए, वो माफ करता है.
Praise God.